1968 गाड़ी चल रही थी इसके आज में तुम बच्चे समझ सकते हो, बाप तो सभी का एक ही है और बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ भी बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है और सतयुग में भी बाप से वर्षा मिलता है, परंतु वहाँ एडॉप्शन की बात नहीं होती। यहाँ तो बीमारियां आदि होती हैं तो कोई को बच्चा पैदा नहीं होता है तो एडॉप्ट करते हैं, वहां ये बातें नहीं होती। दिन से बच्चे को वर्षा मिल रही है, ये है बेहद का बाबा। बाप अर्थात जिससे जन्म मिलता है और वर्षा मिलता है। यहां तुमको जन्म मिला है ना, कहां ब्रह्मा से तुमको ब्राह्मण जन्म मिला है ना, परंतु वर्षा तो बाप से मिलता है। ये है मजीवा जन्म, इस बाप के तुम बन गए तो उस बाप से बुद्धियों को तोड़ इनसे जोड़ना होता है। धनवान बाप का बच्चा कब गरीब की एडॉप्शन थोड़े ही स्वीकार करेगा। यहाँ बच्चे जानते हैं बाप के बनने से विश्व की बात सही मिलती है। बाप है विश्व का मालिक और ब्रह्मा को अगर बाप मान लिया जाए तो ब्रह्मा से क्या वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मणों की राजाई नहीं है। जो वर्षा मिले बाप से तो तुमको विश्व की बातचीत मिल जाती है, तो जरूर बाप तुमको पावन भी बना देंगे, बुलाते भी इसीलिए। पावन दुनिया में है राजा ही, बाकी ये है शांति धाम, परंतु उस शांति धाम का कोई वर्णन नहीं है। वहां शांति धाम में कर्मेंद्रियां ही नहीं होती जो कोई पार्ट बजावे। आत्मा तैयार रहती है हमारा टाइम आवे तो हम जाकर के पार्ट बजावे। तो अभी बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को पवित्र बन करके जाना है और पावन दुनिया में पतित तो कोई जा ही नहीं सकता। और हम सभी को ले जाऊंगा, क्योंकि तो पार्ट चलना है तो आगे चल करके देखेंगे क्या क्या पार्ट चलना है। मूल बात है रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, फिर ऐसे तो नहीं है कि यहां कोई तीसरा नेत्र निकल जाता है। ये तो बुद्धि का नेत्र है, बुद्धि खुल जाती है, मन बुद्धि रूपी आत्माओं को ज्ञान मिला है। संगम पर तुम पढ़ते हो और पद नई दुनिया में पाते हो, बाकी सभी आत्माएं चली जा रही। कहां चली जाएंगी? मुक्ति धाम वापस चली जाएंगी, तो मुक्त पद पा जाएंगे। ये बातें समझाने की कोशिश करते हो, विलायत से भी समझने के लिए आते रहते। हो सकता है कोई समझ ले कि भगवान आया है राजयोग सिखलाने, तो विलायत में भी आवाज फैल जाएगा। विवेक कहता है ढेर के ढेर आवेंगे, क्यों लग जाएगी? क्या होता है तो आगे चल करके देखेंगे। कुछ मनुष्यों की समझ में आ जाए फिर चलना भी अच्छा है। समझते हैं बाबा भी कहां जंगल में चले, अभी तो अच्छा नहीं लगता है। दिन प्रतिदिन हंगामा जास्ती होता जाता है। कामेशु क्रोधेशु है ना, कहेंगे ये वही दादा है, लगाओ इनको पत्थर। बाबा ने भी कहा है अभी हम बाहर जाकर के क्या करूंगा, मैं तो अपने बच्चों के बीच में ही आता हूं। फिर कहते हैं फादर सो सन्स, सन्स सो फादर। बच्चों का काम है औरों को समझाना। बाबा ने कहा भी उस समय जब इंदिरा गांधी के नाक को चोट लगी थी, तुम्हारा नाक खराब होगा परंतु हमको तो कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि जानवर लोग हैं ना, आग लगाते रहते हैं, मारते रहते हैं। मोटर में भी कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये बाबा कहते हैं मोटर का तुम नाम भी न लो, तुम कहां बाहर जाओ ही नहीं। बाबा राय देते हैं अभी बाहर निकलना अच्छा नहीं है, नहीं तो तकलीफ तुमको ही होगी, इनको नहीं होगी, इनको इनको किसके लिए बोलते थे? ब्रह्मा को। इनका तो पार्टी है चैन की बंसी बजाने का, तो पार्ट पूरा हुआ। तो अभी बच्चों को ये बेहद का धंधा करना है, सभी को पैगाम देना है। बोले हमको शांति चाहिए तो इस चित्र के सामने उनको बैठा दो। इनके राज्य में विश्व में शांति थी, इनके राज्य में लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। गीता में लिखा हुआ है भगवान ने नर अर्जुन को नारायण जैसा बनाने के लिए राजयोग सिखाया। तो उसे पूछना पड़े लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कहेंगे शास्त्रों में लिखा है सतयुग आदि में था। तो सतयुग आदि में ही गीता ज्ञान दिया होगा, द्वापर के अंत में तो गीता ज्ञान नहीं दिया होगा, जो आकर के कली वो पापी युग की स्थापना करे। सामने ले जाना चाहिए। अभी तो इस दुनिया में अशांति है, कलयुग अंत में ही बहुत अशांति होती है। सतयुग में तो रावण राजी नहीं होता तो विकार ही कैसे होंगे। लक्ष्मी नारायण के लिए तो गाते हैं, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, तो किसी ने बनाया? जरूर कहेंगे गीता के भगवान ने बनाया, वहां विकार की बातें कैसे हो सकती है, वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में बकवाद लिख दी है कि देवताएं भी विकारी थे। तो अभी हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं जहां विकारों का नाम निशान नहीं रहेगा, विश्व में शांति तो जरूर होनी चाहिए ना। आकाश का तो खाली थोड़े ही होता है, आकाश में तो विश्व है। अभी ये आकाश तो बहुत बड़ा है, दुनिया भी बहुत बड़ी है, पहले छोटी थी। उस दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब कुछ था, अभी हमको भी राम राज्य में चलना है। अगर चलना है तो बैठो, हम तुमको समझा दें। शांति धाम तो होता है मूल वतन, वहां आत्माएं अपने मूल रूप में रहती हैं, बिंद रूप में रहती हैं। इस विश्व में आओ तो सुख और शांति दोनों होता है सत्य गुरु। समझना बहुत सहज है, बाप की नजर तो बेहद में जाती है, समझते हैं इतनी सभी आत्माओं को ले जाना है। इतना चिल्लाते रहते हैं, साहूकार तो चिल्लाते नहीं। तो जो यहां चिल्लाते नहीं है उनको तो वहां पाई पैसे का पद मिल जाएगा। ये शंकराचार्य जो गद्दी पर बैठे हुए हैं वो वहां क्या बनेंगे? ये भी पिछाड़ी में तमोपठान समय में ही आवेंगे। जो अच्छा पहले नंबर वाला शंकराचार्य होगा वो थोड़ा ही भक्ति करता होगा। शंकराचार्यों की भी गद्दियां चली हैं, एक के बाद एक उनका चेला गद्दी पर बैठता रहता है। तो बोला कि जो पहले नंबर वाला शंकराचार्य होगा वो किसकी भक्ति करेगा? उसका कोई गुरु होता है क्या? वो साकार में किसी को गुरु मानता है क्या? उसका तो कोई गुरु नहीं होता। ये शंकराचार्य की परंपरा भी कहां से चली? कैसे? हाँ, संगम युग में ये परंपरा कैसे चली? कौन आते तो ब्रह्मा का चेला है शंकर क्या? वो तो अपने चेले को गद्दी पे बैठाते हैं। ब्रह्मा ने भी कोई चेला था ना जिसको गद्दी पे बैठाया? ब्रह्मा गया तो कौन गद्दी पे बैठा है? माता दादी गद्दी पे बैठी। तो उन्होंने भी फॉलो किसको किया? भक्ति मार्ग वालों को फॉलो किया या ज्ञान में फॉलो किया? और तो भक्ति मार्ग वालों को ही फॉलो किया। तो पहला शंकराचार्य कौन? destacou e sacaram meu guru nem cá. Beira de meu gato, o rato de meu falou para ele. Beira de meu com lua. É? Eu ia que a de me bita. Desculpa, aí para levar lá. Foi nem cá. और एडवांस के आदमी भी एक ही है जिसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई भी नहीं साकार में होता तो पहला तो कोई देहधारी साकार की पूजा नहीं करता होगा ये बाद के शंकराचार्य हैं जो अपने अपने गुरुओं की पूजा भी करते रहते हैं पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था इसकी तरफ इशारा किया अभी लास्ट में जो शंकराचार्य है वो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था वो तो अद की बात हो गई अब बेहद में जाओ कौन जगदीश भाई आखिरी नारायण है ना तो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था अभी इनको गद्दी मिली है आचार्य की गद्दी मिली है बेसिक में सबसे ज्यादा नॉलेज में पावरफुल कौन माना जाता था यहां बाकी काट दिया उनका शिष्य इतना होशियार न होगा तो उनको गद्दी दे दिए इनका शिष्य ब्रह्मा बाबा का जो चेला था चापलूसी करने वाला विश्वेश्वर भाऊ उनका भतीजा वो इतना ज्ञान में होशियार नहीं था क्या कामकाज में करुणा सेवा में बहुत होशियार था कराची से लेकर के यदि समानता चला आया लेकिन ज्ञान में होशियार नहीं था तो गद्दी किसको दे दी हाँ गद्दी इनको दे दी पहले ये गवर्नमेंट सर्वेंट अभी इनको गद्दी मिली हुई है तो तुम लिख सकते हो ये इन्होंने टाइटल धराया है श्री श्री 108 जगत गुरु यदि अगर ये जगत गुरु है तो ये पूजा कैसे करते हैं किसकी ब्रह्मा का चित्र बना करके पूजा करते ना इनको 100-200 चिट्ठियां जानी चाहिए एक दो चार चिट्ठियां भेजेंगे तो ये उनमें ध्यान लगावेंगे नहीं कल्याण तो सबका करना है नई दुनिया में सब पूज्य होते हैं और यहां सब है पुजारी पुजारी सब दुर्गति को पाए हुए हैं जो पूज्य होते हैं वो सदगति को पाते हैं तो युक्ति से उनकी चुनरी पहननी चाहिए इसमें डरने की बात नहीं है तुम कोई से भी पूछ सकते हो तुमको क्या चाहिए तुम अथॉरिटी हो पूछो सुख चाहिए शांति चाहिए इस दुनिया में सुख और शांति कब थी द्वापर और कलयुग में तो सुख शांति थी नहीं द्वापर में तो दिखाया महामारी महाभारत युद्ध हो गया कलयुग तो है ही कल है कलेश का युग तो अपने आप ही कहेंगे सत्युग में शांति सुख था सत्युग में जहां शक्ति का राज्य होता है वही सुख शांति होती है अच्छा बच्चों को बोलो एक पेज का रात्रि क्लास है 28 जनवरी 1968 सभी का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। सभी का माना पांच सौ सात सौ करोड़ का कनेक्शन शिव बाबा के साथ होता है, है? नहीं होता। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो मनुष्य मात्र को गति सदगति मिलेगी, मिल जाएगी। माना जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, आदि नहीं मध्य में नहीं तो अंत में जरूर, सबका बुद्धियोग का कनेक्शन एक शिव बाबा के साथ होना जरूरी है। जब तक शिव बाबा के खजाने में जमा न हो तो उनका कुछ भी बनता नहीं है। तुम्हारा तो शिव बाबा के साथ कनेक्शन है ब्रह्मा द्वारा, क्या तुम्हारा मीडिया कौन है? तुम्हारा मीडिया है ब्रह्मा। क्यों अकेले डायरेक्ट शिव बाबा के साथ क्यों नहीं? क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। देखो सेंटर खुलते रहते हैं तो शिव बाबा के खजाने में जमा होना चाहिए, ऐसे नहीं हम अपना सेंटर आप ही जाकर के खोल ले लें। जैसे लीला है कुछ भी करती है जो मिलता है, परंतु उनका जमा तो कुछ भी नहीं होता। सेंटर बोला होगा बैठ गई होगी, तो ऐसे नहीं अपना आप ही जाकर के खोले। जब तक शिव बाबा के पास न आए, खजाने में पहुंचा ही नहीं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। और ये बड़ा भारी दंड चढ़ जाता है, ऐसे नहीं रेस करके श्रीमद् बिगड़ गीता पाठशाला खोल दें, या सेंटर खोल दिया, बिगर श्रीमद् के करेंगे तो उनको मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनता है। क्योंकि शिव बाबा के खजाने से उनका कनेक्शन नहीं है। अगर यहीं से सीख करके फिर जाए बनाते हैं तो भी बिगर श्रीमत अगर करते हैं तो पद बहुत कम पाएंगे। कोई का भी अशुद्ध अहंकार बाप के पास चल नहीं सकेगा। क्योंकि बाप तो समर्थ है ना, बच्चे तो नंबर ला रहे हैं। शिव बाबा के साथ बेढंगा कोई चल नहीं सकता, गिर पड़ेंगे। क्योंकि शिव बाबा एक ही हत्ती है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या होगा, और ही गिर पड़ेंगे। ये अशुद्ध अहंकार कोई के भी बाप के साथ चल नहीं सकता। पुरुषार्थ रहता है कैसे भी करके बाप से हम ऊंचे ऊंचे पद पाए ले रहे, दैव गुण धारण करें, परंतु लड़ने झगड़ने वाले क्या पद पा सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है। बाप याद की यात्रा समझाते, ये बड़ी ऊंची बात है, ऐसे कोई कब समझ न सके। बाप ही समझाते हैं कि पढ़ाई से ये ऊंच पद मिल सकता है, विश्व का मालिक बनना है ना, इसमें गुप्त बड़ी भारी मेहनत है। स्वभाव संस्कार को बदलना बड़ा मुश्किल है, देह अभिमान के साथ फिर और भी विकार आ जाते हैं, फिर उनको कितना भी समझाओ उनका पूंछ सीधा होता ही नहीं। बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं, है तो बहुत सहज बात, परंतु मेहनत बहुत है। आत्माभिमानी बनना है ना, आत्माभिमानी बनकर के नहीं सुनेंगे तो धारणा में इतना बल नहीं भरेगा, इतना असर नहीं होगा। आत्मा में संस्कार धारण होते हैं ना, देह अभिमान के कारण मनुष्यों की देखो क्या हालत हो गई। अभी फिर आत्माभिमानी बनने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो। देह अभिमानी बनने से बुद्धि मिट्टी हो जाती है, देह मानी मिट्टी। आत्माभिमानी बनने से तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तो सूक्ष्म बुद्धि में कितना ज्ञान ठहरता है। तो ये सब्जेक्ट सबसे जाति तीखी है, कौन सी, आत्माभिमानी बनने की। नॉलेज धारण करना तो सहज है, ये पहली सीढ़ी है अपन को आत्मा समझना। और गृहस्थ व्यवहार में रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी समझाया फिर समझाया। दूसरे रास्तों पर तो जाना ही नहीं है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो बाइबल के सिवाय और कोई ग्रंथ नहीं उठाते हैं, उनकी बुद्धि में धर्म पिता भी एक रहता है, उनका धर्म भी एक, उनका धर्म ग्रंथ भी एक ही होता है। तुमको भी कोई शास्त्र आदि की दरकार नहीं है। क्योंकि जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं, बाप कोई आकर के शास्त्र नहीं सुनाते हैं, न शास्त्र बढ़वाते हैं। तो वो भक्ति मार्ग के मनुष्यों के बनाए हुए भक्ति मार्ग के शास्त्र हम क्यों उठावे। देह अभिमान गया तो सब विकार चले जावे। ऐसी ऐसी अवस्था में जाना है, याद करते करते हम सब हिसाब किताब चुकतू करके चले जावे। याद से हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे। वो धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स ने याद किया, अभी भी क्राइस्ट के चित्र लगाते रहते हैं, गिरजाघर बनवाते रहते हैं, तो उनकी याद से पाप कर्म भस्म हो गए क्या? अच्छा, देवताओं के चित्र बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उनकी याद करने से पाप कर्म भस्म हुए क्या? क्यों नहीं भस्म हुए? क्योंकि वो धर्म पिताएं, वो देवताएं सब नीचे गिरने वाले हैं, कोई भी ऊपर उठने वाला खुद ही नहीं है, तो उनकी याद करने से कोई ऊपर उठ सकता है क्या? नहीं ऊपर उठ सकता। ये तो एक बाप ही है जो अकर्ता है, अभोक्ता है, कोई भी पति से पति तन में प्रवेश करता है, नाम ब्रह्मा रखता है, कर्म करता है, परंतु कर्मेंद्रियों का लेपक्षेप उस पर नहीं लगता। और जो भी मनुष्य मात्र है, चाहे देवताएं हैं, सबके ऊपर कर्मेंद्रियों का लेपक्षेप लगता है। देवताई जन्म में नहीं लगेगा तो जन्म लेते लेते जब नीचे गिरेंगे तब लगेगा। नीचे सबको गिरना है, परंतु एक बाप ऐसा पार्ट बजाता है जिस पर कोई कर्मेंद्रियों का लेप छेप नहीं लगता और नीचे गिरने का तो सवाल ही नहीं। तो ऐसे बाप की याद में रहेंगे तो तुम्हारे भी सारे पाप कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। वहां सत्युग में तो विकार की बात ही नहीं होगी। अभी तुम पाप की याद के बल से सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। ऐसे नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा ही पवित्र बनेगी, नहीं, पहले आत्मा पवित्र बनेगी और बाद में संगठित याद से सारे विश्व का वायुमंडल पवित्र बनता जाएगा। सारा वातावरण पवित्र बनेगा तो पांच तत्व भी पावन बनते जाएंगे। इतनी योग में ताकत है, इतनी कि चैतन्य आत्माओं को ही पावन नहीं बनाते हो योग बल से, वरन पांच तत्वों को, सारी दुनिया को तुम योग बल से पावन बनाई देते हो। परंतु याद का बल कैसा होना चाहिए? विविचारी याद से होगा क्या? विविचारी याद से नहीं होगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब ऐसी टेव पक्की पड़ जाएगी तो अपनी आत्मा के भी पाप कर्म बस हो तोड़ते जाएंगे और सारी दुनिया का वायुमंडल सुधरता जाएगा। एक दिन सब कोई समझेंगे कि ये न का यथार्थ योग है। बाकी सबका अच्छी हो, राजयोग और हठयोग का ये भी एक चित्र बनाना चाहिए। हठयोगियों को देखा तो होगा, कपड़े की रस्सी बनाए मुंह में डालते हैं और नीचे से निकालते हैं। ढेर सारी रस्सी, बंदर खाते हो, ये कैसे करते हैं? देखना चाहिए ये क्या क्या सिखलाते रहते हैं। तुमको इनकी करतूत देखने के लिए कोई मना नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम हठयोगियों की हठयोग को देखेंगे तो तुमको कोई लेप छेप लग जाएगा। इसमें बड़ी झूठ बुद्धि चाहिए। जैसे हनुमान का मिसाल है, क्या मिसाल है? हनुमान अरावण की जूतियों में जाकर बैठता था। दिखाती है उनको कोई हिला ही नहीं सका। तुम भी महावीर हो ना, बहुत बहादुर चाहिए, निडर भी हो, परंतु देवान होता है तो डर जाते, देवान नहीं होगा तो डर लगेगा ही नहीं। ज्ञान से घेराव डालना है। तुमने ही रावण राज्य में घेराव डाला है, तुम जरूर विजय पाएंगे। परंतु ऐसे घेराव डाल करके विजय पाने वाले बहुत थोड़े होते हैं। रावण के घेरे में बगैर पूछे तो कोई जा ही नहीं सके। ये तो आबरू गवाते हैं, अपनी चलन और वातावरण से होता तो सब ड्रामा अनुसार ही। जो सर्विस फील्ड पर है उन्हीं की बात है। आगे चलकर के ऐसे ऐसे क्लियर चित्र निकलेंगे जो चित्र के सामने खड़े होते ही आप ही समझ जाएंगे। अब की वाणी है 68 की वाणी है, शुरुआत की। उस समय प्रदर्शनी के चित्र इतने ढेर के ढेर नहीं बने थे जो मेले में दिखाए जाते। चार चित्र ही बनकर के तैयार हुए थे, बाद में ढेर के ढेर चित्र बन गए। तो ये बात तो क्लियर हो गई क्या कि आगे चलकर के ढेर चित्र निकलेंगे। परंतु उन चित्रों का रिजल्ट आया कि ढेर के ढेर चित्र निकलेंगे जिन चित्रों के सामने जाने से आप ही समझ जाएंगे। समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे होता है क्या? हुआ है? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? भगवान की महाभारत की झूठे हो गए क्या? है
अभी तो
जड़ चित्रों की बात नहीं है। आगे चल करके ऐसे चैतन्य चित्र ट्रांसलाइट के निकलेंगे जैसे क्राइस्ट का चेहरा देखते ही क्रिश्चियंस को धर्म पिता के ऊपर विश्वास हो गया। महात्मा बुद्ध का चित्र देखते ही बौद्धियों को पक्का निश्चय हो गया। ऐसे ही वो धर्म पिताएं तो फिर भी मानवीय धर्म पिताएं थे, मानवीय धर्म स्थापन किया, उन्होंने कोई देवता धर्म स्थापन नहीं किया। तुम तो देवता धर्म में जाते हो। मनुष्य को देवता बनाने का काम है बाप का, वो सब धर्म पिताओं का, बापों का भी बाप है। वो इस सृष्टि पर जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होता है तो जो पारसनाथ का मिसाल है, पारस पत्थर का क्या मिसाल है? कि छूने से ही लोहा सोना बन जाता। जो भी पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं उनको भी समझ में आएगा कि भगवान बाप आवे। और पहना भी सबको यही है जो अभी कहते हैं। असठ में भी यही कहते थे, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई नहीं समझता और ना कोई याद में ठहरता, तब भी यही कहेंगे क्या है? तब भी यही कहेंगे अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही पैगाम तो देंगे ना। फिर अभी असर क्यों नहीं पड़ता, तब असर क्यों पड़ जाएगा? है नहीं, ब्रह्मा के तन के द्वारा जो भी कहा अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझ मुझे बाप को याद करो, तो ब्रह्मा की ये स्टेज बनी थी प्रैक्टिकल में। क्या कहने वाले की प्रैक्टिकल में स्टेज नहीं होगी तो सुनने और समझने वालों की भी वो स्टेज नहीं बनी। बाप ही पतित पावन है और कोई मनुष्य मात्र पतितों को पावन बनाने का ठेका नहीं ले सकता। और बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूं, आता हूं एक एक कल्प के संगम युगे। और उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है युगे युगे, ऐसे कैसे लिख दिया? वास्तव में एक कल्प में होते हैं चार युग, चार युग पूरे होने के बाद कल्प पूरा होता है। हर कल्प के बाद मैं आता तो हूं, परंतु जब आता हूं तो चारों युगों की शूटिंग कराता हूं। और हर एक युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं नदी हुई है। सतयुग में देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, उनकी भी चार अवस्थाओं की शूटिंग होती है। त्रेता में क्षत्रिय होते हैं, उनकी भी चार अवस्थाओं की शूटिंग होती है। द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र, वो भी चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो चार अवस्थाओं से जो गुजरने का टाइम है वो उन्होंने कल्प समझ लिया और लिख दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा संभवामी युगे युगे। अब तुम्हारी बुद्धि में बात बैठती है तो संगम युग तो जरूर चाहिए जो कलयुग बदल करके सतयुग हो जाए। समझाने के लिए बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत करते रहते हैं, बच्चे खुद भी समझ जाएंगे कौन कौन समझाने के निमित्त बनते हैं। अभी ही मनुष्य समझदार बनते हैं, फिर और कोई युग में कोई जन्म में समझदार नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी बाप आकर समझाते हैं। अभी तो सब तमोप्रधान, तमोप्रधान माना बेसमझ और सतोप्रधान माना समझदार। बाप कहते हैं रावण राज्य में तुम कितने बेसमझ बन पड़े, जो बेसमझ होते हैं बाप को कुछ नहीं समझते हैं तो वो तो सर्विस कर नहीं सकते, सर्वे इस फील्ड पर उतरेंगे ही नहीं। अगर कुछ बात को समझा होगा तो सर्विस में जरूर उतरेंगे। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। भले ऐसे बच्चे देरी से आते हो, वो जरूरी नहीं आज में ही आ जावे या मध्य में आ जावे, कोई लास्ट में भी आते हैं और बहुत फास्ट चले जाते हैं और ही तीखे हो जाते हैं, गैलप करते रहते हैं। इसका क्या कारण है? लौकिक दुनिया में तो ऐसा होता नहीं कि परीक्षा के टाइम पर कोई स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करे और तीखा चला जावे। यहां ऐसे क्यों होता है? कोई तो कारण होगा है? क्या हिसाब किताब?
हाँ,
उनको ये आत्माएं होती है जो पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थी। कारण या कारण शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण पने के वो संस्कार अगले जन्म में साथ चले जाते हैं। उस लौकिक तो पढ़ाई में ऐसे नहीं होता है, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई में जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो व्यर्थ नहीं जाती, अगले जन्म में ऐड हो जाती। तो गैलप करते रहते हैं। तुम बच्चों ने तो हिस्ट्री सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, कैसे कैसे रात को भागे। फिर इतने बच्चों को बैठ पाला, इसको ही भट्टी कहा जाता है। फिर भट्टी से नंबर वार निकलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को।